ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीअना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه। یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ پہلے میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس بھائی چارگی اخوت کا کیا تقاضا ہے وہ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ لا یظلم ہو کہ وہ اپنے اس بھائی کے اوپر زیادتی اور حق تلفی کا معاملہ نہیں کرے گا, وہ ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یخذلہ اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کوئی دوسرا اگر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے اور یہ وہاں موجود ہے اور اس کی مدد کر کے اس کو ظلم سے بچا سکتا ہے, تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ظلم سے بچائے۔ اسی کو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یخذلہ, وہ اپنے اس مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ولا یحقرہ اور اس کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقویٰ ہاؤن, تقویٰ یہاں ہے۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی آدمی کے باعزت ہونے کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ اور ہم نے تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے بنائے۔ یہ جو خاندان مختلف بنائے وہ کوئی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ۔ ایک ہی نام کا ایک آدمی ہے عبداللہ, دوسرا بھی عبداللہ نام کا ہے, تیسرا بھی عبداللہ نام کا ہے, تو اب دونوں کو تینوں کو پہچاننے کے لیے کیا کریں گے؟ فلاں یہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں فیملی سے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون سا عبداللہ۔ اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو, فخر اور غرور کے لیے نہیں۔ کیونکہ عربوں کے یہاں کسی اونچے خاندان سے ہونا ये बड़ी इज्जत की चीज समझी जाती थी अल्लाह तबारक। और कोई आदमी किसी ऊंचे घराने से है तो चाहे उसके पास कोई और खूबी ना हो, कोई और कमाल ना हो, एक दूसरा आदमी है जिसका ताल्लुक किसी ऐसे घराने और खानदान से है जो निचले तबके से ताल्लुक रखता है, तो वो उसको हकीर समझते थे। बारी ताला फरमाते हैं कि इन्ना करमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इस इरशाद में इसी उन बुनियाद की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि अत्तकवा हा होना, कोई किसी को हकीर न समझे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ किसी की भी इज्जत की बुनियाद कि कौन कितना ज्यादा इज्जत वाला है, जितना ज्यादा उसके पास तकवा होगा, जितना ज्यादा वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का एहतमाम करेगा उतना ही अल्लाह के यहाँ वो इज्जत वाला है। हुजूर फरमाते हैं तकवे का ताल्लुक दिल से है, और दिल की क्या कैफियत है वो अल्लाह के अलावा और कोई जानता नहीं। कोई ऐसा थर्मामीटर आज तक ईजाद नहीं हुआ जो आदमी के तकवा के मुतालिक कुछ बतावे कि उसको लगा कर देख सके कि इसमें कम है इसमें ज्यादा है। अल्लाह ही जानते हैं कि किसके दिल की क्या कैफियत है। उसी को हुजूर ने फरमाया कि तकवा यहाँ है, तीन मरतबा ये बात फरमाई। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेहस्ब इब्राहिम मिन शर अन यहक़िरा अखाहुल मुस्लिम, एक आदमी की बुराई के लिए, एक आदमी के बुरा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। किसी मुसलमान को चाहे वो किसी दर्जे का हो हकीर समझने की, उसके साथ तहकीर का मामला करने की शरीयत इजाजत देती नहीं है। कोई भी हो जाहिरी शक्लो सूरत के एतबार से, चाहे वो हसीन हो या बदसूरत हो, मालदारी और मालो दौलत के एतबार से ज्यादा हो या कम हो, किसी ऊंचे ओहदे और मनसब पर हो या ना हो, किसी वजह से भी शरीयत किसी को हकीर समझने की इजाजत नहीं देती। वह हर आदमी को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई को हकीर न समझे। जो आदमी हकीर समझता है अल्लाह तबारक ताला के यहाँ, ऐसा आदमी जो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझता हो बहुत वह बुरा है। बेहस्बी इब्राहिम मिन शर अन यहक़िरा अखाहुल मुस्लिम, और आगे फिर फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे हराम, एक मुसलमान पूरा का पूरा, एक इंसान के अंदर तीन हैसियतें होती हैं, एक तो उसके जिस्मानी हैसियत, एक उसके गोया मकाम और मर्तबे की हैसियत, इज्जत और आबरू की हैसियत, और तीसरी जो है उसके पास जो माल है वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान की ये तीनों चीजें हर एक के ऊपर हराम है, दमोहु व मालुहु व इर्जुहु, उसकी जान, शरीयत के उसूल से हटकर शरीयत ने जहां इजाजत दी हो उसको तकलीफ पहुंचाने की सजा के तौर पर, वहां तो दी जा सकती है, उसके अलावा उसको उंगली भी रखना, उसके मारना, एक तमाचा मारना, ये इसकी भी शरीयत इजाजत देती नहीं है, और उसके माल की भी हिफाजत, किसी का एक पैसा हम शरी उसूल किसे हट कर नहीं ले सकते उससे, और उसकी इज्जत व आबरू। आज इज्जत व आबरू का क्या हाल हो गया, लोग मामूली मामूली बातों में उसके ऊपर तोहमतें लगाते हैं और उसके मुतालिक बुराइयां करते हैं, गीबतें करते हैं, ये सब क्या है कि एक मुसलमान की इज्जत को खो गया खत्म करना है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हुजूर फरमाते हैं कि ये मुसलमान पूरा का पूरा यानी उसकी जान, उसका माल और उसकी इज्जत व आबरू सब दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है, वो उसको छेड़ सकता नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही मुस्लिम के अंदर। इसी हदीस की मुनासिबत से दो चार बातें अर्ज करूंगा। आजकल क्या हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो है अपनी मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा है। वासबगा अलैकुम नियामहू ज़ाहिरतन व बातिनतन, अल्लाह ताला ने तुमको ढांप दिया अपनी नेमतों से, जाहिर में भी और बातिन में भी। जो कुछ भी किसी के पास है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। अब बाज नेमतें तो ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हर एक को दी, जिस्म, आंखें, कान, जबान, हाथ, पांव, दिलो दिमाग। आम तौर पर बाज लोग इसमें भी कम होते हैं, लेकिन आम तौर पर हर एक इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने यह जिस्म और उसके आजा की शक्ल में जो नेमतें हैं सबको अता फरमाई। और अल्लाह की दूसरी जो नेमतें हैं आदमी के जिस्म से बाहर, जमीन, आसमान, हवा, आग, पानी, उनसे भी तमाम अल्लाह की मखलूक और तमाम इंसान बराबर फायदा उठाते हैं। इसी में कोई तफरीक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह के बनाए हुए सूरज की रोशनी से मालदार फायदा उठा सकता और गरीब न उठावे। नहीं, अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया कि हर एक यकसां तौर पर, बराबरी के तौर पर उससे पूरा फायदा उठा सकता। तो अल्लाह की जाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। बाज तो जैसा कि मैंने बताया सबको दी, बाज ऐसी नेमतें हैं कि बाज हजरात को ज्यादा दी और बाज को कम दी। जैसे माल और दौलत है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। ओहदा और मनसब है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। खूबसूरती है, किसी का चेहरा खूबसूरत है, किसी का नहीं है, बदसूरत है। और होशियारी है, दानाई है, समझदारी है, अच्छी आवाज है, तकवा और परहेजगारी है, बाजों में है, बाजों में नहीं है। तो ये मुख्तलिफ बाद नेमतें ऐसी भी हैं कि किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास नहीं है, किसी के पास है। और ये भी अल्लाह तबारक तआला ने अपनी हिकमतों से इंसानों के अंदर तकसीम की है। जिसको नहीं दी इसलिए नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, कि अल्लाह ताला के खजाने में कमी है, नहीं। अल्लाह ताला सारे इंसानों को और सबको बहुत वाफिर मकदार में, करोड़पति, अरबपति, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बना चाहता तो बना सकता है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, लेकिन किसी को दौलत ज्यादा दी, किसी को कम दी, अल्लाह ने अपनी हिकमत और फैसले से। बहरहाल जिसके पास जितनी भी नेमतें हैं वो अल्लाह की दी हुई है, लेकिन इंसानों का मामला कैसा है कि उन नेमतों की वजह से इंसान अपने जैसे अपने भाइयों को हकीर समझता है। एक आदमी है, उसके पास दौलत है, बड़ा मालदार है, दूसरा उसके मुकाबले में गरीब है। अब ये दौलत वाला अपनी दौलत की वजह से अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है, और जो गरीब है, जिसके पास दौलत नहीं है, उसको दौलत न होने की वजह से क्या समझता है? हकीर समझता है। एक आदमी है, खूबसूरत है, वो अपनी इस खूबसूरती की वजह से अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। एक दूसरा बदसूरत है, उस बदसूरती की वजह से उसको वो हकीर समझता है। एक आदमी की आवाज बड़ी अच्छी है, शानदार कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, और दूसरे की आवाज ऐसी नहीं, तो अब वो जो शानदार आवाज वाला है वो अपनी इस आवाज की खूबी की वजह से अपने आप को दूसरे के मुकाबले में ऊंचा समझता है, और जिसके पास ये नहीं है उसको कमतर समझता है। एक आदमी के पास ओहदा और मनसब है, हुकूमत के अंदर हुकूमत ने कोई ऊंचा ओहदा उसको दे रखा है, उसकी वजह से वो अपने आप को ऊंचा समझता है, और जिसके पास ओहदा और मनसब नहीं है उसको हकीर समझता है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर एक आदमी दूसरे आदमी को क्या समझता है? हकीर समझता है। इस यही दीनी नेमतों का भी हाल है। ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دینداری عطا فرمائی، پانچوں وقت کی نمازوں کا کو پابندی سے پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو بہت سوں کو جن کو یہ نعمت ملی ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے عقیر سمجھتے ہیں، میں تو بڑا عالم ہوں، میں بڑا بزرگ ہوں، میں اللہ کا مقرب ہوں، یہ نعمت اللہ نے دی، لیکن اس نعمت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا اور اپنے ان بھائیوں کو جن میں کے پاس یہ نعمت کم مقدار میں ہے ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اس کی دینداری کی کمی کی وجہ سے یا مالداری دنیا کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے حقیر مت سمجھو، نہ ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے حقیر سمجھنے کی اجازت ہے، نہ جو ہے یہ مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، نہ خاندانی بزرگی اور شرافت کی وجہ سے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سہل ابن عبداللہ، حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی وہاں سے گزرا، اونچے گھرانے کا آدمی تھا، بڑا اونچا سمجھا جاتا تھا سماج میں، سوسائٹی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تو اس کے جواب میں صحابہ نے عرض کیا، حریم ان خطبہ ان کہا و ان شفا ان یشفا و ان قالا ان یستما، کہ اللہ کے رسول، یہ ایسے اونچے خاندان کا آدمی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی بھی اس کے پیغام نکاح کو رد کر سکتا نہیں ہے، وہ اگر کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، وہ اگر کوئی بات کہے تو لوگ دھیان سے سنیں گے۔ ایسے بڑے آدمی ہوتے ہیں، کچھ کہیں گے تو لوگ سب جینا چاہتا ہو تو بھی سر جھکا کر کے سننے کی بات کرتے، تو لوگوں نے جواب میں یہ باتیں کہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح دے تو اس کا نکاح ضرور کیا جائے گا، لوگ انکار نہیں کریں گے جہاں پیغام دیا ہے، وہ اگر کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی، وہ بات کرے گا کوئی تو لوگ اس کی بات کو دھیان سے سنیں گے۔ ہو گئی بات، چلے وہ تو گزر گیا وہاں سے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب مسلمان وہاں سے گزرا، صحابی تھے، وہ بھی پہلے بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی، اب وہ جو غریب صحابی وہاں سے گزرے، حضور نے ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا ان کے متعلق کیا کہتے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا، حریم ان خطب اللہ ان کہا، کہ اللہ کے رسول، یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجے گا کوئی اپنی لڑکی اس کو دے گا نہیں، سوسائٹی میں، سماج میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَإِن شَفَعَ اللَّهُ يُشَفَّعُ، وہ اگر کسی کی سفارش کرے گا تو کوئی اس کی سفارش کو مانے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا۔ وَإِن قَالَ اللَّهُ يُسْتَمَعُ، کوئی بات کہے گا تو کوئی بھی اس کی بات کو دھیان سے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سماج میں، سوسائٹی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں ان سے بہتر ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے ظاہری حالت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کا بھی مقام کتنا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کائی کی وجہ سے، دل کی حالت کی وجہ سے۔ ظاہری شکل و صورت ہم دیکھتے ہیں نا، تو کسی کے متعلق سوچتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں ایسا معمولی آدمی ہے۔ ایک صحابی تھے، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمائل میں، شمائل ترمذی کے اندر واقعہ موجود ہے، بدصورت تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، جب دیہات سے مدینہ منورہ آتے تھے تو وہ देहाती लोग अपने यहाँ खेती के अंदर जो कुछ पैदावार होती है, सब्जी, दूध, घी, वो बेचने के लिए शहर में आते हैं। तो वो आते थे मदीना मुनव्वरा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए देहात में जो चीज़ें तैयार होती थी वो हदिये के तौर पर लाते थे और पेश करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और जब वो वापस जाने लगते थे तो शहर की जिन चीज़ों की देहात वालों को ज़रूरत होती है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीद फरमा कर उनको दिया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुतालिक फरमाते थे कि ज़ाहिर हमारा देहात है और हम उनका शहर हैं। मतलब ये था कि एक शहर के आदमी को देहात की जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़ाहिर हमारी उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और एक देहात के आदमी को शहर की जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उनकी उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक मर्तबा वो अपने गांव से मदीना मुनव्वरा आए हुए थे और कुछ घी और शहद ले करके बाजार में बैठ करके बेच रहे थे। उनको मालूम, उनको देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बैठ कर बेचने में मशगूल हैं, उनका ध्यान भी नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पीछे से आके आपने उनकी कौली भर ली। बच्चों को देखा होगा ना, उनसे यूं करके कर लिया, कौली भर ली। अब वो जब हुजूर ने उनको इस तरह जकड़ लिया अपने इसमें बाहों में, तो वो जोर से कहने लगे, भाई छोड़ो छोड़ो, कौन हो, कौन है ये? बोलते बोलते यूं देखा कंखियों से, तो उन्होंने महसूस किया कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फिर तो उन्होंने अपनी पीठ को और ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के साथ लगाने की कोशिश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि वो पहचान गए हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई इस गुलाम को मेरे पास से कौन खरीदेगा, या मिजाह फरमा रहे हैं उसके साथ, उनके साथ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, कौन खरीदेगा इस गुलाम को? तो उसके जवाब में, चूंकि वो बदसूरत थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आप गुलाम हो, बहैसियत गुलाम के मुझे बेचेंगे तो मैं तो बहुत निकम्मा हूँ, मेरी कोई कीमत आएगी नहीं। इन्नी लका से दूं, मैं तो बेकीमत हूँ। उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम अल्लाह ताला के यहाँ बड़े कीमती हो। देखो, उनकी जाहिरी शक्ल और सूरत की वजह से लोग ये समझते थे कि उनकी कोई हैसियत नहीं, उनके कल्ब की वो कैफियत थी दिल की, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मालूम हुआ, किसी की जाहिरी शक्ल और सूरत को देखकर हमें फैसला करने की इजाज़त नहीं है। ये तो खूबसूरती और बदसूरती की बात हुई। दूसरा, दीनदारी की कभी कमजोरी होती है। अल्लाह ने हमको, आपको तौफीक दी, हम मस्जिद में आकर नमाज पांचों वक्त की जमात के साथ अदा करते हैं। अब उसका नुकसान बाज मरतबा बाद लोग क्या होते समझते, बाहर निकले देखा एक आदमी मुसलमान है, शराब पिया हुआ मस्त है और नमाज के लिए भी आता नहीं, उसकी इस हालत को देखकर वो क्या समझता है, हकीर समझता है उसको। देखो, मैंने शुरू में वर्ज किया था कि किसी भी मुसलमान को हकीर समझने की शरीयत ने इजाजत दी नहीं। हाँ, अगर वो शराब पीता है, गलत काम करता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो उसकी इन हरकतों को, उसके ये जो काम है ना, उनको बुरा समझो, लेकिन उसकी जात को बुरा ना समझो। शरीयत हमें ये तालीम देती है। जैसे देखो, एक आदमी का बच्चा है और वो किसी खतरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला है, उसको कैंसर हो गया, टीबी हो गई, तो अब उस हम लोग उस बीमार, उस बीमारी को तो बुरा समझते हैं, लेकिन बीमार को बुरा नहीं समझते, उस पर तो तरस खाते हैं, उसकी हमदर्दी करेंगे, अल्लाह उसको इस बीमारी से नजात दे। यही हाल है, ये रूहानी बीमारी है, वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला है। अल्लाह ने हमें अपनी फरमा बरदारी की तौफीक दी, तो इस नेमत का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उसको हकीर समझें, नहीं, हाँ उसकी इस हरकत को हम बुरा समझेंगे, लेकिन उसके ऊपर तो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इस बुराई से निकल कर अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर आ जाए। हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि किसी आदमी को किसी गुनाह में मुब्तला देख करके उसको हकीर न समझो, उस वक्त तो तुम अपने मुतालिक सोचो कि इस आदमी को इस गुनाह से निकालने के लिए मैंने क्या मेहनत की, मैंने क्या कोशिश की, मैंने तो कोई कोशिश के लिए की नहीं, फिर मुझे क्या हक पहुंचता है इस गुनाह की वजह से उसको हकीर समझने का। तो बहरहाल ये भी शरीयत इजाजत नहीं देती। बुखारी शरीफ में वाकया मौजूद है, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। एक सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला और उनका लकब था हिमार और नुआइमान भी बतलाया जाता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे। बाद ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बड़ा आदमी हंस लेता है। मदीना मुनव्वरा में कोई काफिला आता था कुछ बेचने के लिए, कोई घी बेचने के लिए आया, शहद बेचने के लिए आया, तो उसके पास से घी और शहद खरीदा, फिर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि अल्लाह के रसूल मैं आपको ये हदीये में पेश करता हूँ। अभी उसके साथ सौदा करके घी खरीद के लाए थे, पैसे अभी अदा नहीं किए थे। बाद में जब वो पैसे लेने के लिए आता तो उसको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और अर्ज करते, अल्लाह के रसूल ये वो घी की कीमत इनको अदा कर दो। दूसरा आजम फरमाते कि भाई तुमने मुझे हदीये में नहीं दिया। कि अल्लाह के रसूल जब ये घी और शहद मैंने देखा तो मेरा जी चाहा कि आप उसको नोश फरमाओ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने इससे सौदा तो कर लिया और लेकर के आपकी खिदमत में तो पेश कर दिया, लेकिन उसकी कीमत अदा करने की मेरे पास सकत और ताकत नहीं है, इसलिए लेकर। तो हुजूर मुस्कुराते और कहते भाई इसकी कीमत अदा कर दो। ये उनका मामला था हुजूर के साथ। पहले इस्लाम के शुरू दौर के अंदर शराब हराम थी, बाद में हलाल थी, बाद में उसकी हुरमत का हुक्म नाजिल हुआ। जब हलाल थी सभी उसको इस्तेमाल करते थे। ये तो हजरात सहाबा की दीन पर बड़ी मजबूती की अलामत है कि जहां शराब के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ उसी वक्त सब ने उसको छोड़ दिया। बल्कि रिवायतों में आता है हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के सौतेले अब्बा हैं और एक बड़े जलील कदर अंसारी सहाबी हैं, उनके घर पर शराब की महफिल लगी हुई थी। हजरत अनस खुद कहते हैं कि मैं पिला रहा था, इतने में बाहर कोई ऐलान हो रहा था। मुझे लोगों ने कहा कि क्या ऐलान हो रहा है सुनो। तो मैं बाहर निकलकर ऐलान सुना तो ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था कि अल्लाह तबारक ताला ने शराब को हराम कर दिया। हजरत अनस कहते हैं मैंने घर में आकर के कहा कि ऐलान ये हो रहा है, बस जिसके हाथ में थी मुंह के करीब ले गए थे उसी वक्त मुंह से हटा दिया। और उस रोज मदीना मुनव्वरा की गलियों में शराब ऐसी बही के जैसे बारिश के जमाने में पानी बहता है, और एक मुद्दत तक वहां से शराब की बू लोग आती रही। ये सहाबा का हाल था ईमान की मजबूती का, उसी वक्त छोड़ दिया। हालांकि जो आदमी आदी हो उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जो थे हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो शराब के हराम होने के बाद भी उनसे शराब पीने में कोताही हो जाती थी। उन्होंने एक मरतबा शराब पी ली, शराब जब हराम हुई तो उस पर शरीयत में सजा आई कि भाई उसको कोड़े लगाए जाएं, उसकी पिटाई की जाए। एक मरतबा वो लाए गए शराब पी हुई हालत में, तो चूंकि शरीयत ने उसके ऊपर सजा मुकर्रर की थी, जो मजलिस में मौजूद थे लोग उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको मारो, और इन्होंने उनको पिटाई की उस सजा के तौर पर। एक मरतबा ऐसा हुआ, फिर थोड़ी मुद्दत के बाद दूसरी मरतबा ऐसा हुआ, फिर थोड़ी मुद्दत के बाद तीसरी मरतबा इसी तरह शराब पी हुई होने की हालत में वो लाए गए। तो जब तीसरी मरतबा ऐसा हुआ तो मजलिस में एक आदमी की जबान से ये जुमला निकला, अल्लाहुम्मा लानहु मा अक्सर मा यूता भी, या अल्लाह इस आदमी पर लानत भेज, कितनी मरतबा इस आदमी को इस तरह शराब पी हुई होने की हालत में हुजूर की खिदमत में लाया जाता है और उसमें सजा जारी होती है। जब उसकी जबान से ये जुमला निकला तो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ फरमाया, ला तलानू हो, लानत में मत भेजो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, वल्लाहि मा आलिम तो इन्नहु लयुहिब्बुल्लाह व रसूलहु, लानत मत भेजो, अल्लाह की कसम जहां तक मैं जानता हूं यह आदमी अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। देखो जाहिरी अमल में कमजोरी थी लेकिन उसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत भेजने की इजाजत नहीं दी, बल्कि जिसने ऐसा किया था उसको सख्ती के साथ डांटा और रोका। तो मैं ये दीनदारी की वजह से, तो दीनी कमजोरी की वजह से भी किसी को हकीर समझने की इजाजत नहीं है। हम अगर नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं और हमारा पड़ोसी है नमाज नहीं पढ़ता तो इसकी वजह से उसको हकीर समझने की इजाजत नहीं। मेहनत करो, समझाओ, उसके पीछे लगे रहो, उसकी इस बुरी आदत को तो बुरा समझो लेकिन नमाज छोड़ने की वजह से उसको हकीर मत समझो। हमें अल्लाह ताला ने नमाज की तौफीक अता फरमाई, ये अल्लाह का क्या है, करम है। वला वला नियामतुल्लाह व रहमतुहु, वला वला फजलुल्लाह व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। कुरान में बारी ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल न होती तो तुम में से कोई भी नेक बन सकता नहीं। हम अगर नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त की जमात के साथ, यह हमारा कमाल नहीं है, यह अल्लाह की तौफीक है। यह अल्लाह ताला ने हमारे लिए पांच वक्त की नमाज जमात से पढ़ना क्या कर दिया, आसान कर दिया। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करो। लेकिन इसकी वजह से अल्लाह का वो बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता उसको हकीक समझने की शरीयत इजाजत देती नहीं। आप मेहनत कीजिए, उसके ऊपर हक है उसका एक मुसलमान होने की हैसियत। तो गोया बारी ताला फरमाते हैं, वला वला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हें शामिल हाल न होती तो तुम में से कोई नेक नहीं बन सकता था। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं नेकी की तौफीक देते हैं। अगर हम कुरान पढ़ लेते हैं तो ये अल्लाह का एहसान है। उसकी वजह से कोई ऐसा आदमी जो कुरान को हाथ नहीं लगाता उसको हकीक समझने की शरीयत इजाजत नहीं देती। तो मैं ये अर्ज करने जा रहा था कि शरीयत की जो ये तालीमात हैं, इन तालीमात में किसी भी मुसलमान को हकीर समझने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रुब अश अशा अगबर जी तिमरैन तंबू अनहुमल अनहुमा आयनुन नास, तंबू अनहुमा आयनुन नास लव अक्सम अल्लाह ला अबरहु मिनहुम बरा इब्न मालिक, के बहुत से ऐसे लोग जिनके बाल बिखरे हुए हैं और जिनके कपड़े गर्द आलूद हैं, मैले कुचेले हैं, उनके दो चादरें ऐसी हैं कि आदमी की निगाह उस पर टिकती नहीं। बाल लोगों का लिबास देखकर आदमी को अच्छा नहीं लगता, वजूद फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मकाम इतना ऊंचा है कि वो अल्लाह के भरोसे पर किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। एक और इरशाद है कि बहुत से रुब आशा अकबर मदफून अनिल अब्वाब, बहुत से ऐसे जो मेले कुचेले कपड़े वाले बिखरे हुए बाल वाले किसी के दरवाजे पर जावे तो वो घर वाला उसको धक्के देकर निकाल देगा, लेकिन اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی قسم میں کیا کر دیں، بری کر دیں، نا پورا کرائیں اس کی قسم. تو اگلی روایت میں حضور نے فرمایا ایسے ہی لوگوں میں سے حضرت براء ابن مالک بھی ہیں. یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام کثرت سے سنتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. ان کے یہ بھائی ہیں براء ابن مالک، بہت دبلے پتلے لیکن بڑے جری تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ دیکھنے میں ایسے معمولی معلوم ہوتے ہیں، ان کا لباس بھی بڑا گھٹیا ہے کہ آنکھیں اس پر ٹکتی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ تستر علاقہ ہے ادھر، یہ جو ازبکستان وغیرہ کا علاقہ ہے اس ادھر، وہاں اسلامی لشکر ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے مدت سے کوشش کر رہا تھا لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو اس لشکر میں یہ بھی تھے، حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان لشکر والوں میں سے کسی کو معلوم تھا. تو جب بہت کوشش کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا بھائی ان سے کہو، ان کو پکڑ لیا لشکر والوں نے، کہ آج تو تم اللہ تعالیٰ کو قسم دے کر دعا کر ہی دو کہ اللہ ایک قلعہ فتح کروا دے. جب لوگوں نے ان کو پکڑا مجبور کیا، انہوں نے دعا کر لی کہ اللہ یہ قلعہ فتح کروا دے اور مجھے تیرے حبیب سے ملا دے. چنانچہ قلعہ تو فتح ہوا لیکن اس جنگ میں یہ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اس کے مقام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. حضرت محمد ابن سعد ان کی کتاب ہے طبقات، تاریخ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جب عرفات کے اندر سورج غروب ہو گیا، اور جیسا کہ جو لوگ حج میں جاتے ہیں جانتے ہیں کہ عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی بلکہ وہاں سے روانہ ہو کر کے مزدلفہ میں آ کر مغرب کی نماز پڑھی جائے گی. عرفات میں غروب ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہونے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے، اور آپ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر تیار ہیں لیکن ابھی چلا نہیں رہے اونٹنی کو. اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں یمن کے شاہی گھرانے کے کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت زید ابن حارثہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان کے وہ حضور کے بڑے لاڈلے تھے. ان کے انتقال کے بعد یہ ساری محبت حضور کی منتقل ہو گئی، شفٹ ہو گئی ان کی طرف، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سفر میں ان کو اپنے پیچھے اپنے اونٹ پر بٹھایا کرتے تھے. تو اصل میں جب چلنے کا وقت آیا نا تو ان کو حاجت پیش آئی، وہ اپنی حاجت کے لیے چلے گئے تھے پیشاب وغیرہ کے لیے، وہاں سے فارغ ہو کر آئے. جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا، آپ روانہ ہوئے. اب وہ ان کو جب دیکھا ہے یمن والوں نے، شاہی گھرانے والوں نے، تو وہ دبلے پتلے جسم والے اور جو ہے سانولے رنگ کے چپٹی ناک، چونکہ ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشیہ تھی اور یہ اپنی ماں پر پڑے تھے، ان کے ابا جو تھے حضرت زید وہ تو عرب تھے اور گھوڑے چٹے تھے، لیکن کبھی بچہ ماں پر پڑتا ہے کبھی باپ پر پڑتا ہے. تو وہ سانولے رنگ کے اور ناک چپٹی तो छरेरे बदन के उनको जब हुजूर ने अपनी बात पीछे बिठा करके रवानगी रवाना हुए आप, तो वो यमन के शाही घराने के लोग आपस में क्या कहने लगे, अरे यार इसकी वजह से हमको रुकना पड़ा। उनको देखकर इन शाही घराने के लोगों ने इनको हकीक समझा कि इनकी वजह से हमको रुकना पड़ा। जब ये वाकया बयान करते हैं हजरत उरवा इब्ने जुबैर, तो बहुत बड़े फकीह हैं हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, मदीना मुनव्वरा के फुकाहे सबा, सात बड़े बड़े उलमा मशहूर थे, उनमें ये हैं हजरत उरवा। वो हदीस के अंदर बहुत सारी रिवायतें उनकी आती है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के खास शागिर्द, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ज्यादातर हदीसें यही नकल करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि वलेदा कफर अहलुल यमन मिन अजलेदा, कि यमन वाले जो कुफर और इर्तिदाद में मुब्तला हुए वो इस जुमले की वजह से। ये साहिब तबकात अल्लामा मोहम्मद इब्ने साद फरमाते हैं कि हजरत उरवा इब्ने जुबैर के इस जुमले का मतलब समझने के लिए मैंने अपने उस्ताद हजरत यजीद इब्ने हारून से पूछा क्या मतलब है। वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बुखारी शरीफ में उनकी हदीसें बहुत हैं। तो हजरत यजीद इब्ने हारून ने बतलाया कि उनको जो हकीर समझा ना, उस हकारत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस्लामी तारीख से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि हुजूर की वफात के बाद अरब के अंदर इर्तिदाद की हवा चली। बहुत से लोग और बहुत से कबीले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उन्होंने इस्लाम छोड़कर दोबारा कुफ्र इख्तियार कर लिया। तो ये हजरत उरवा इब्ने जुबैर फरमाते हैं कि यमन के बाद कबाइल इन्होंने जो इस्लाम छोड़कर कुफ्र इख्तियार किया उसकी वजह उनका ये जुमला था। तो हकीकत तो ये है कि भाई किसी के मुतालिक भी दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं लाना चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी एक आदमी से भी अपने आप को बेहतर समझा तो उसने अपनी हिमाकत से अपने आमाल को क्या कर दिया, जाय कर दिया। हजरत अल्लामा अब्दुर्रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, शमाइल तिर्मिजी के शारह हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक में से किसी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह ताला ने जब उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसको पैदा फरमाया, जाहिर है कोई भी मखलूक अल्लाह ताला अगर उसकी तरफ तवज्जो फरमा कर उसको पैदा न करते तो वजूद में नहीं आ सकती थी वो। तो अल्लाह ताला ने उसको अदम से वजूद बख्शा, यानी वो अल्लाह ताला ने अपनी अजमत और किबरियाई और बड़ाई के बावजूद उसकी तरफ क्या फरमाई, तवज्जो फरमाई, तभी तो वो वजूद में आया, पैदा हुआ। अब तुम उसको हकीर समझते हो तो गोया तुम उसको हकीर समझना ये उसके पैदा करने वाले की तहकीर है। जैसे एक दर्जी ने कोई कपड़ा बनाया, कुर्ता बनाया, अब कोई आदमी उस कुर्ते का मजाक उड़ा, क्या बनाया, तो ये मजाक किसका होगा, उस बनाने वाले का मजाक होगा। तो अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी हकीर समझना कि नऊज़ु बिल्लाह उसका उसके डांडे अल्लाह ताला की जात से मिलते, इसलिए अपने आप को इससे खास तौर पर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसी को इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने देखो अल्लाह के ने नेमतें इसलिए नहीं दी कि इन नेमतों की वजह से हम अल्लाह के बंदों को क्या समझें। हमें अगर अल्लाह ने माल दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये माल मिलने में हमें हमारे अमल को, देखो बाज़ नेमतें ऐसी हैं कि उन नेमतों के अंदर आदमी के मेहनत को दखल नहीं होता। एक आदमी हसीन और जमील है, बड़ा खूबसूरत, खूबसूरती बड़ी अच्छी नेमत है जो अल्लाह ने अता फरमाई। अब अगर वो अपनी इस खूबसूरती की वजह से उन लोगों को जो बदसूरत हैं हकीर समझता है तो हम उससे पूछेंगे कि तुम किस बुनियाद पर हकीर समझते हो इनको, तुम खूबसूरत हो इसलिए। अब हम सवाल करते हैं कि ये तुम्हारी खूबसूरती जो है उसमें तुम्हारा कोई अमल है, दखल है क्या, तुमने मेहनत करके ये खूबसूरती हासिल की, नहीं ना, ये तो अल्लाह की दी है। تو بعض نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دی, سب تسلیم کرتے ہیں. البتہ بعض نعمتوں کے متعلق آدمی کو ذرا اپنے متعلق گمان ہوتا ہے کہ یہ میری محنت سے ملی. کسی کے پاس دولت ہے, علم ہے, تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی اور میں نے بہت جو ہے خون پسینہ ایک کر کے یہ دولت کیا کی ہے حاصل کی ہے. اس کو غلط فہمی ہے. اس کو ہم سوال کریں گے کہ تو نے جتنی محنت کی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے, تو بتا, اب تو ذرا اپنے پوری سوسائٹی کا جائزہ لے, سروے کر, اور ایسی جو تو نے محنت کی اس سے ڈبل محنت کرنے والے اس سوسائٹی کے اندر سماج میں موجود ہیں, لیکن ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے. اگر یہ دولت محنت کی وجہ سے ملتی تو انہوں نے تو تجھ سے ڈبل محنت کی ہے, ان کو ملنی چاہیے تھی, لیکن ان کو نہیں ملی. معلوم ہوا کہ محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے. ایک آدمی جو ہے پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بہت اونچے ہو, بہت کچھ پڑھا لکھا ہے, بہت سارے اس کے پاس جو ہے سرٹیفکیٹ ہیں, وہ یوں سمجھے کہ میں نے محنت کر کے یہ کمال حاصل کیا. اس کو بتائیں گے کہ بھائی جس طرح تو نے محنت کی, تیرے ساتھ جو کلاس فیلو تھے ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے تجھ سے زیادہ محنت کی تھی لیکن ان کو وہ نمبر ملا نہیں جو تم کو ملا. تو یہ جو نمبر ملا یہ دراصل اللہ کا کیا ہے, فضل ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے اللہ کے کسی بھی بندے کو حقیر مت سمجھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس آدمی کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اس حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس پر ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا, کہ اللہ کے رسول ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں اچھے کپڑے, اللہ نے پیسے بھی دیے اچھے کپڑے بنوائے, تو کیا یہ اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے پہننا, اچھا لباس پہننا کیا کبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ تو جمیل اور خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے, لیکن اچھے کپڑے پہن کر جن لوگوں کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں ان کو حقیر سمجھنا. ان الکبر بطر الحق وغمۃ الناس, تکبر حق کا انکار, ہم میں کوئی کمی ہے, کسی نے ہم کو متنبہ کیا مولوی صاحب یہ ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کیسی ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن میں اور جاتا ہوں, نہ ایسی بات نہیں, غلط دلیلیں قائم کرتا ہوں اس کی بات کو رد کرنے کے لیے, لیکن میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ اس کی بات صحیح, جو حق بات کہی گئی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھے, یہ ہے تکبر. تو اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں, لیکن اپنے ان اچھے کپڑوں کی وجہ سے ان لوگوں کو جن کے کپڑے ایسے عمدہ نہیں ہیں کیا سمجھنا, حقیقت سمجھ, یہ ہے تکبر. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, باقی کسی مومن کو حقیر نہ سمجھا جائے. مومن کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے. آخر میں ایک روایت سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں ما اطیب کے و ما اطیب ری ہو گئے, کہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور کتنی پاکیزہ ہے تیری خوشبو, و ما اعظم کے و ما اعظم حرمتوں کے, اے کعبہ تو کتنا عظمت والا ہے اور تیرا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. والذی نفس محمد بیدیہ لحرمت المومن عند اللہ اعظم من حرمتک, قسم اس ذات کی जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, एक मोमिन की हुरमत, उसका मकाम, उसकी अजमत अल्लाह के यहां तेरी अजमत और हुरमत से ज्यादा है। दमे ही व माली, उसकी जान की भी और उसके माल की भी। और हमको ये भी हुक्म दिया गया है कि अन नज़ुन्न बिही खैरा, कि हम मोमिन के साथ अच्छा गुमान रखें। इसलिए भाई देखो, हमें अल्लाह ने अगर नेमतें अता फरमाई हैं, माल दिया है, दौलत दी है, खूबसूरती दी है, ओहदा और मनसब दिया है, दीनदारी दी है, तकवा दिया है, इल्म दिया है, ऊंचा मकाम दिया है, तो ये इसलिए नहीं दिया कि अल्लाह के दूसरे बंदों को हकीर समझा जाए, बल्कि अल्लाह की नेमतों की कदर पहचानो, उसका हक अदा करो, और किसी भी मोमिन की तहकीर से, उसको हकीर समझने से अपने आप को बचाने का एहतमाम करो। ये मोमिन की तहकीर आदमी को बड़े आजमाइश में डालती। अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।